हरे कृष्णा। सो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ इंस्पिरेशन, या हम इसको बोल सकते हैं आल्सो फिजिक्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो क्या है ये टॉपिक? तो जो साइंस के फील्ड में अलग अलग खोज होती हैं, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा डिस्टर्बेंस कम होगा, जो लोग आएंगे पीछे आते रहेंगे। साइंस के फील्ड में जो डिस्कवरीज होती हैं, या मैथमेटिक्स और फिर आर्ट्स, म्यूजिक स्पेशली, उसमें जो नए नए म्यूजिक जो देते हैं, वो कैसे निर्मित होता है, वो ज्ञान कैसे डेवलप होता है, कैसे नई नई थ्योरीज आती हैं, डेवलप होती हैं, इसके पीछे इंस्पिरेशन का क्या हाथ है, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्यों डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को? क्योंकि ये टॉपिक से हमें अपने वो विषय जिसको हम पिछली कक्षा में भी डिस्कस किए थे, क्या था पिछली क्लास का टॉपिक? मैन एंड मशीन। तो मैन एंड मशीन के द्वारा हमने क्या देखा था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग मशीन, अ कॉन्शियस मशीन एंड एन अनकॉन्शियस मशीन, दैट कॉन्शियसनेस। तो ये जो फेनोमिनन है, कैसे बड़ी बड़ी डिस्कवरीज होती हैं, बड़ी बड़ी खोजें कैसे होती हैं, इससे इस विषय के ऊपर रोशनी डलती है कि महान महान वैज्ञानिक जो खोज करते हैं, क्या वो मात्र ब्रेन की एक्टिविटी, जिसको अल्टीमेटली कुछ न्यूरोनल कनेक्शंस, कुछ बायोफिजिकल केमिकल लॉस एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या वो सफिशिएंट है बड़ी बड़ी डिस्कवरीज को एक्सप्लेन करने के लिए? तो या उसके अलावा एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्तमान में जो हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है उससे अलग है। तो इसलिए हम ये विषय आज डिस्कस कर रहे हैं। तो नॉर्मली कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी का प्रोसेस क्या है, क्या स्टेप्स हैं उसके, कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी कैसे होती है, खोज कैसे होती है? सो उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बेसिकली हाइपोथेटिको डिडक्टिव प्रोसेस। साइंटिफिक प्रोसेस का जो तरीका है वो है हाइपोथेसिस और डिडक्शन। किसी भी थ्योरीज को प्रूव होने से पहले उसकी एक हाइपोथेसिस दी जाती है, प्रपोज की जाती है। कोई वैज्ञानिक एक हाइपोथेसिस प्रपोज करता है, उस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटल डाटा से स्टडी किया जाता है कि वो हाइपोथेसिस मैच हो रही है क्या नहीं एक्सपेरिमेंटल डाटा से। जब तक कोई थ्योरी, हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटल डाटा से सब्सटेंशिएट नहीं होती है, सपोर्ट नहीं होती है, तब तक उसको हम थ्योरी में कन्वर्ट नहीं करते, थ्योरी नहीं मानते हैं उसको। दैट इज रिजेक्टेड, दैट हाइपोथेसिस रिजेक्टेड इफ इट इज नॉट सपोर्टेड बाई सफिशियंट एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो इस तरीके से साइंटिफिक फील्ड में हम आगे प्रगति करते हैं, और मैथमेटिक्स में भी उसी प्रकार से होता है। मैथमेटिक्स में भी कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स प्रपोज किए जाते हैं, और फिर उसको अराइव करने के लिए, उस इक्वेशंस या उस सिस्टम पर पहुंचने के लिए अलग अलग उसके इक्वेशंस के माध्यम से देखा जाता है कि इज इट पॉसिबल टू रीच दैट और नॉट। तो समथिंग सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड। तो जो ऑब्जर्वेशन करने की बात है, डाटा को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, उसके लिए तो बहुत स्टडी हो रही है और बहुत सारे उसमें हम आगे प्रगति कर रहे हैं कि कोई भी हाइपोथेसिस को कैसे डिटेक्ट करना है कि ये सही है कि गलत है, इसके विषय में तो हमने बहुत प्रगति की है। कोई भी हाइपोथेसिस को कैसे एक्सपेरिमेंट करके पता लगाना है कि सही है कि नहीं है, तो उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, सो मेनी थिंग्स आर बीइंग डन। लेकिन ये प्रश्न कि हाइपोथेसिस कैसे बनती है, ये प्रश्न के ऊपर बहुत कम विचार किया जाता है। कोई भी हाइपोथेसिस है वो सही है कि नहीं है इसके ऊपर तो स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सही है कि नहीं है। लेकिन पहला प्रश्न कि कोई हाइपोथेसिस ही कैसे बनती है, आप प्रश्न समझ रहे हैं? कोई प्रपोजल, कोई विचार कि ऐसे है, वो कहां से आता है, वो कैसे आता है, हाइपोथेसिस किस बेस पे बनती है? तो ये हमारा आज के क्लास का डिस्कशन का टॉपिक है, हाउ हाइपोथेसिस इज फॉर्म्ड। क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? हाउ हाइपोथेसिस इज गिवन कि ये ऐसे है, अभी फिर उसको एक्सपेरिमेंट करके हम देखेंगे कि ऐसे है कि नहीं है, लेकिन वो दिमाग में विचार कैसे आया कि ये ऐसे है, वो हाइपोथेसिस कैसे बनी, वो विचार कैसे आया, कहां से आया? तो ये जो हाइपोथेसिस है, अगर हम ऐसा सोचते हो कि जो भी हमारे पास अवेलेबल डाटा है उसको देख करके वो हाइपोथेसिस बनती है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है, सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल, लेकिन उस डाटे को, उस इंफॉर्मेशन को टैकल करने के लिए, उसको किसी भी डायरेक्शन में बढ़ने के लिए यू नीड सम थ्योरी, यू नीड सम हाइपोथेसिस टू टेक इवन वन स्टेप। 100 इंफॉर्मेशन, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, सो टू उनको काम करने के लिए, उनके साथ टू वर्क विद देम यू नीड सम हाइपोथेसिस, सम थ्योरी टू गो इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसको आइंस्टाइन ने इसको एक समझाया, इस प्रॉब्लम को। लेट्स सी व्हाट आइंस्टाइन हैज टू से अबाउट इट। इट मे बी ह्यूरिस्टिकली यूजफुल टू कीप इन माइंड व्हाट वन हैज ऑब्जर्व्ड। ह्यूरिस्टिकली मीन्स अपने बलबूते पर हिट एंड ट्रायल मेथड से किसी तथ्य पर पहुंचने का प्रयास, उसे ह्यूरिस्टिक अप्रोच कहते हैं। सो इट मे बी ह्यूरिस्टिकली यूजफुल टू कीप इन माइंड व्हाट वन हैज ऑब्जर्व्ड। हमने क्या ऑब्जर्व किया है उसको दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है, बट ऑन प्रिंसिपल इट इज क्वाइट रॉन्ग टू ट्राई ग्राउंडिंग ए थ्योरी ऑन ऑब्जर्वेबल मैग्नीट्यूड्स अलोन। मात्र ऑब्जर्व हम क्या कर रहे हैं उसके आधार पर हम थ्योरी नहीं बना सकते हैं, केवल ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम थ्योरी नहीं बना सकते। व्हाई? इन रियलिटी द वेरी अपोजिट हैपेंस। इट इज द थ्योरी विच डिटरमाइंस व्हाट वी कैन ऑब्जर्व। इट इज द थ्योरी विच डिटरमाइंस व्हाट वी कैन ऑब्जर्व। यू सी, आज जो सब अलग अलग डिस्कवरी हो रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई नई चीज पैदा हो रही है, यू नो सो मेनी थिंग्स आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग देयर, बट ग्रेजुअली नाउ वी आर एबल टू सी इट, वी आर एबल टू सी इट, व्हेन वी नो अबाउट इट देन वी आर एबल टू सी इट। तो एक्चुअली देखने का प्रोसेस केवल इन आंखों से नहीं है, देखने के प्रोसेस के अंदर है, यू नो ब्रेन के अंदर क्या है तब आप उसको देखते हैं। एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, वो आके इसको देखेगा तो उसको देखेगा, लेकिन देख के भी नहीं देखेगा। लेकिन एक मैच्योर्ड आदमी जो जानता है क्या है, उसको देख करके ही विल अंडरस्टैंड एट डिफरेंट लेवल। सो एक्चुअली सीइंग इज नॉट जस्ट बाय दिस आईज। सो हियर आइंस्टाइन सेज रियलिटी इज यू सी अकॉर्डिंग टू योर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू योर थ्योरी यू अंडरस्टैंड, नॉट दैट ऑब्जर्वेशन से थ्योरी, वो भी बनती है, लेकिन केवल ऐसा नहीं होता है कि ऑब्जर्वेशन से आप सोचें कि मैंने ये ऑब्जर्व किया इसका ये है, क्योंकि ऑब्जर्व करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इन व्हाट वे यू ऑब्जर्व, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। लेकिन एक आदमी जानता है, ओ दिस इज एक्चुअली दिस पैटर्न, दिस इज दिस पैटर्न, सो यू कैन आइडेंटिफाई दैट, बट इफ यू डोंट नो इट विल हैपन इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट। तो इसीलिए अगर हम ये सोचते हो कि हाइपोथेसिस कैसे बनती है, बस बहुत सारे डाटा हैं और स्टेप बाय स्टेप साइंटिस्ट पे वर्क करते हैं और हाइपोथेसिस बन जाती है, ऐसे नहीं होता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो कैसे बनती है फिर हाइपोथेसिस? तो हम ऐसे प्रमाण देखते हैं कि जो भी विशेष रूप से बहुत महान महान खोज होती है विज्ञान के अंदर, उसमें जो इन्वेंट करने वाला है, जो साइंटिस्ट है, उसके मन के अंदर एक विचार उत्पन्न होता है अचानक, एक उसके मन के अंदर एक विचार उत्पन्न होता है, जैसे उदाहरण देख सकते हैं हम आर्किमिडीज। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर उसने जो दिया, तो कैसे वो हुआ, तो उसको एक राजा ने एक काम दिया था कि राजा का जो मुकुट था उसको पता लगाने का था कि ये सॉलिड गोल्ड का है कि नहीं, बिना उसमें होल ड्रिल किए। सो ही वॉज वेरी मच यू नो वर्किंग ऑन दिस टास्क, कैसे पता लगाना है, कैसे पता लगाना है, कैसे पता लगाना है, लेकिन ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड आउट द वे। तो एक दिन स्नान करते करते सडनली द आंसर अपीयर्ड इन हिज ब्रेन, या इसलिए उसने क्या बोला, व्हेन ही फाउंड द आंसर, यूरेका यूरेका, आई फाउंड इट, व्हेन ही वॉज टेकिंग बाथ, ही वॉज नॉट एट दैट टाइम इन हिज लेबोरेटरी वर्किंग, ही वॉज जस्ट टेकिंग बाथ कैजुअली एंड सडनली द आंसर केम टू हिज माइंड, या आई फाउंड इट, आई फाउंड इट। सो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जिसमें हम देखते हैं कि ऐसे इंस्पिरेशन से सॉल्यूशन सडनली हमारे दिमाग में आता है। उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ज्यादातर कॉमन रहती हैं। जनरली वे लोग काफी लंबे समय से उन प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं जिनके दिमाग में इंस्पिरेशन आती हैं, काफी लंबे समय से वो उसके ऊपर प्रयास कर रहे होते हैं उसका हल ढूंढने का, और जब वो इंस्पिरेशन आती है, जब वो रिजल्ट, जब वो उनके मन के अंदर वो हाइपोथेसिस बनती है, तब जनरली वो उस समय उसके ऊपर काम नहीं कर रहे होते हैं, वो कुछ और काम कर रहे होते हैं, कॉन्शियसली उसके ऊपर उस समय काम नहीं कर रहे होते हैं। और जो हाइपोथेसिस बनती है जनरली आज तक उन्होंने जिस अप्रोच से इस प्रॉब्लम को देखा था उस अप्रोच से बिल्कुल नए तरीके से वो हाइपोथेसिस बनती है, जिस प्रोसेस से वो चल रहे थे उसके बिल्कुल अलग, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट वे द आंसर कम्स। और जब ये उत्तर उनके दिमाग में आता है इमीडिएटली दे बिकम अवेयर ऑफ द आंसर इन एंटायरिटी, पूरा उसका उत्तर उनको दिमाग में एकदम से पिक्चर आती है, हालांकि उसके जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं वो अवेयरनेस में नहीं आते हैं तुरंत, जस्ट द आंसर इन द फुल दिस इज आंसर, इसलिए बाद में वो लोग उस पर वर्क करते हैं एंड देन द स्टेप्स कैसे वो उस पर पहुंचे, क्योंकि वो उस पर डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप नहीं पहुंचे हैं, जस्ट द आंसर कम्स टू देम। एंड जब भी ऐसा होता है द पर्सन बिकम्स वेरी कॉन्फिडेंट फ्रॉम विद इन कि दिस इज द आंसर, यस आई गॉट इट। अभी वो कैसे उस आंसर पे पहुंचा उसको ये क्लियर नहीं होता है उस समय जब ये विचार आता है, फिर जाते हैं देन दे वर्क ऑन इट एंड देन ग्रेजुअली दे मेक अ थीसिस स्टेप बाय स्टेप एंड देन प्रेजेंट इट, तो उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन जब ये विचार आता है तब वो सब स्टेप्स नहीं उनको पता होते हैं, लेटर ऑन दे वर्क ऑन इट बट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट दिस इज द आंसर। सो दीज आर अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच इंस्पिरेशंस। सो ये इंस्पिरेशंस कैसे आती हैं, ये विचार कहां से आया, इसके ऊपर वैज्ञानिक गण कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं जिसका हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम अभी एक दो ऐसे इंस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे जहां पर साइंटिस्ट खुद व्यक्त कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स कि क्या महसूस हुआ उनको जब ये उत्तर उनके दिमाग में आया, तो व्हाट दे फेल्ट, हाउ इट हैपेंड। जो हमने भी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब की तो आप देखेंगे कि वही कैरेक्टरिस्टिक्स वो खुद अपने वर्ड्स में बता रहे हैं। तो एक मैथमेटिशियन है कार्ल गॉज, 19th सेंचुरी में, जिसने नंबर्स के ऊपर एक थ्योरी दी, तो वो लिखता है फाइनली टू डेज अगो आई सक्सीडेड लाइक ए सडन फ्लैश ऑफ लाइटनिंग द रिडल हैपन टू बी सॉल्व्ड। दो दिन पहले मैं सफल हुआ, एक फ्लैश की तरह से, एक लाइटनिंग की तरह से अचानक मेरे वो दिमाग में वो जो प्रॉब्लम रिडल थी, जो पजल थी, वो सॉल्व हो गई। आई माई सेल्फ कैनॉट से वॉट वॉज द कंडक्टिंग थ्रेड विच कनेक्टेड वॉट आई प्रीवियसली न्यू विद वॉट मेड माई सक्सेस पॉसिबल। मुझे खुद पता नहीं है कि वो क्या चीज थी जिसने जोड़ा मेरी जानकारी को और जो सफलता के बीच में क्या कड़ी थी जो जिसने जोड़ा, मुझे पता नहीं। what was that? फिर एक और मैथमेटिशियन हेनरी पॉइंकेर, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट एग्जैक्टली, मे बी रॉन्ग, इट्स अ फ्रेंच नेम, फ्रेंच मैथमेटिशियन. सो ही राइट्स, एट द मोमेंट व्हेन आई पुट, तो वो क्या था, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था कुछ समय के लिए, और फिर कुछ समय उसको कहीं बाहर जाना पड़ा, ऑन सम जियोलॉजिकल टूर्स, जियोलॉजिकल टूर पे जाना पड़ा भ्रमण के लिए, टू स्टडी सम जियोलॉजी. एट दैट टाइम he got the answer, so he's writing. At the moment when I put my foot on the step, the idea came to me. जैसे मैंने पत्थर के ऊपर रखा, एकदम से मेरे को आइडिया आ गया. Without anything in my former thoughts seeming to have paved the way for it, मेरे जो पहले के अभी तक के जो मेरे विचार थे, ऐसा कुछ भी उन विचारों में नहीं था जिससे वो विचार जो इससे में आया वो संबंधित हो. That the transformations I had used were identical with those of non-Euclidean geometry. So he found something about the geometry. फिर कई दिन बाद again he had some another spout of inspiration. Then he writes, with just the same characteristics of brevity, suddenness and immediate certainty. So पूरी थ्योरी को डेवलप करने के लिए पहला स्टेप, फिर थोड़े दिन बाद फिर दूसरा, then again on third, finally उसकी पूरी थ्योरी जो थी वो कंप्लीट हुई तीन स्टेप्स में इस तरह से. So, like that, ऐसे instances हम देखते हैं. लेकिन एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि ये जो सभी inspiration होती हैं, क्या ये ऐसी होती हैं जब आदमी उस पर उस problem को solve करने के लिए बहुत मेहनत करता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं उसके कहीं ना कहीं subconscious mind में वो problem होती है. लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं कि जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात नहीं है. जैसे एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन है मोजार्ट. सो हाउ ही कंपोज्ड हिज म्यूजिक, कैसे उसने म्यूजिक कंपोज किया, ही वाज वेरी फेमस म्यूजिशियन. सो तो उसमें तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है कुछ, इट्स जस्ट मैटर ऑफ मेकिंग न्यूअर एंड न्यूअर यू नो मेलोडीज. सो ही इज राइटिंग, when I feel well and in good humor, or when I am taking a drive or walking, thoughts crowd into my mind as easily as you could wish. kabhi main jab acche mood mein hota hu aur chal raha hota hu to achanak man ke andar vichar aane lagte hain bilkul aasani se, jaise chaho waise achar vichar aane lagte hain. whence and how do they come, kaise aur kahan se aate hain, I do not know, pata nahi mujhe kahan se aate hain. And I have nothing to do with it. मैं कोई conscious endeavor नहीं करता हूं, it just flows in. Once I have a theme, another melody comes, linking itself with the first one, in accordance with needs of the composition as a whole. एक के बाद एक पूरी सब melodies आती रहती हैं, link होती रहती हैं एक दूसरे से. Then my soul is on fire with inspiration. If, however, nothing occurs to distract my attention, अगर मेरा ध्यान टूटता नहीं है तो ऐसे बढ़ता जाता है काम. द वर्क ग्रोज, आई कीप एक्सपेंडिंग इट, कंसीविंग इट मोर एंड मोर क्लियरली अंटिल आई हैव द एंटायर कंपोजिशन फिनिश्ड इन माई हेड, दो इट मे बी लॉन्ग. इट डज नॉट कम टू मी सक्सेसिवली, इट डज नॉट कम टू मी लाइक एक के बाद पहले मैं सोचा, फिर कुछ और सोचा, फिर तब, इट जस्ट फ्लोज इन, यू नो, इन होल थिंग इट जस्ट कम्स विद इट्स वेरियस पार्ट्स वर्कड आउट इन डिटेल एज दे विल बी लेटर ऑन. बाद में वो उसको डिटेल जो है उसकी बाद में वर्कआउट करता है, बट द होल थिंग जस्ट फ्लैशेस इन हिज माइंड, बट इट इज इन इट्स एंटायरिटी दैट माई इमेजिनेशन लेट्स मी हियर इट. मीन्स ही कैन हियर इट, वॉट द होल थिंग, सो ही कैन हियर इट एंड देन ही वर्क्स, एंड देन द जो बीच बीच के लिंक थे दे ऑल गेट्स अप बन जाते हैं. सो ही कैन शुरू है पूरा एंटायरिटी, ही कैन हियर इट एंड देन जस्ट ही हैज टू फिल इट इन बिटवीन, दैट्स इट. सो इस प्रकार से इंस्पिरेशन जो है वो उसके अंदर दो फीचर हैं. एक तो कि जो व्यक्ति ये सब खोजे करता है उसका कॉन्शियस एंडेवर नहीं होता, ही इज नॉट कॉन्शियस अबाउट इट, कैसे हुआ, ही इज नॉट कॉन्शियस कैसे हुआ ये. और उसके रीच के बाहर की बात होती है, उसके जो जो उसका थॉट प्रोसेस है उसके बाहर की बात होती है उन चीजों को इन्वेंट करना. तो इसीलिए ये जो साइंटिस्ट था, जो मैथमेटिशियन था पॉइंकेर, तो वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है कि ऐसा लगता है कि एक हमारा सबचेतन अर्धचेतन सबकॉन्शियस सबलिमिनल सेल्फ कोई है हमारी ये चेतना के अंदर नीचे कोई एक सबलिमिनल सेल्फ है कोई एक अर्धचेतन कोई चीज है जो चेतन से ज्यादा पावरफुल है क्योंकि जहां पर चेतन दिमाग फेल हो जाता है वहां पर ये अर्धचेतन मन काम करता है उससे ज्यादा पावरफुल है और ये एक ऑटोमेटिक भी नहीं है कि ये ऑटोमेटिक होता है बल्कि इसके अंदर पावर है सही ये क्या है गलत क्या है इसको चूज करने की ये सब करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर बाय एक्सपीरियंस कि जो जो अंतःकरण है तो उसके अंदर ये सब करेक्टरिस्टिक्स हैं टू चूज व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग लाइक दैट ऑल दिस करेक्टरिस्टिक इज सेइंग जस्ट हियर व्हाट ही सेज द सबलिमिनल सेल्फ इज इन नो वे इन्फीरियर टू द कॉन्शियस सेल्फ इट इज नॉट प्योरली ऑटोमेटिक इट इज कैपेबल ऑफ डिसर्नमेंट इट इज अ टैक्ट इट हैज टैक्ट डेलिकेसी इट नोज हाउ टू चूज टू डिवाइन व्हाट डू आई से इट नोज बेटर हाउ टू डिवाइन देन द कॉन्शियस सेल्फ सिंस इट सक्सीड्स वेयर दैट हैज फेल्ड इन ए वर्ड इज नॉट द सबलिमिनल सेल्फ सुपीरियर टू द कॉन्शियस सेल्फ क्या ये कॉन्शियस सेल्फ से भी ज्यादा उन्नत है ये सबकॉन्शियस सेल्फ लेकिन फिर ये कहने के बाद में वो अपने पीछे खींच लेता है अपने को क्योंकि दिस शोज दैट देयर इज सम एंटिटी सो देन ही रिवर्ट्स बैक हिज स्टेटमेंट ही सेज इज दिस एफर्मेटिव आंसर फोर्स्ड अपॉन अस बाय द फैक्ट्स आई हैव जस्ट गिवन आई कन्फेस दैट फॉर माई पार्ट आई शुड हेट टू एक्सेप्ट इट ये जो रियलिटी है इट इज फोर्सिंग दिस कंक्लूजन ऑन अस बट आई शुड हेट इट बिकॉज ही इज यू नो मैकेनिस्टिक साइंटिस्ट इज सो हाउ कैन आई अंडरस्टैंड हाउ कैन आई एक्सेप्ट दैट कि एक ऐसा कोई एंटिटी है जो गाइड कर रहा है नो आई शुड हेट इट ही देन ऑफर्स ए मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन कि किसी ना किस तरह से ब्रेन के अंदर कुछ ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट है जिसके द्वारा ये सब इंस्पिरेशन होता है कोई ऐसा कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नियमों के अलग कोई चीज नहीं है बल्कि उन्हीं के लॉज के अंदर ही ये संभव है ऐसी इंस्पिरेशन आना तो वैज्ञानिक गण ये जो प्रोसेस है इंस्पिरेशन इसको मैकेनिस्टिक तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल तो जनरली जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बिहेवियरिस्टिक अप्रोच जो लोग लास्ट टाइम क्लास में आए थे बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के अंतर्गत जो उसका फाउंडर है ही इज मिस्टर ट्यूरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाट ही सेज बिकॉज ए मशीन कैन बी मेड टू डू एवरीथिंग व्हाट अ ह्यूमन बीइंग कैन डू देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट मैन इज नथिंग बट ए मशीन क्योंकि हम मशीन से हर वो काम करवा सकते हैं इमिटेट करा सकते हैं जो आदमी कर सकता है इसलिए हम कह सकते हैं कि मशीन आदमी एक मशीन है दिस इज हिज अंडरस्टैंडिंग इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर दे आर ट्राइंग कि जो भी आदमी कर सकता है एवरी बिहेवियर इमिटेट द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स कंप्लीटली इफ यू आर एबल टू डू इट दैट मीन्स ह्यूमन बींग इज नथिंग बट मशीन लेकिन जैसा हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था इस अप्रोच में क्या प्रॉब्लम है क्या केवल जो हम एक्शन कर रहे हैं क्या वो इमिटेट करने मात्र से आदमी बन जाता है या आदमी इससे भी कुछ और है कुछ अलग है लास्ट टाइम जो आए थे डू दे रिमेंबर समथिंग तो एक्शन कर लेने पर भी वो एक्शन की अवेयरनेस वो फीलिंग्स वो तो इमिटेट नहीं हो रही हैं I may be lifting this. I gave this example last time. Or I may be smelling it. So I may be doing the same action and computer may also be made to do this action. You know, lift it. Lekin when I lift it, jab main isko utha raha hu, I am conscious, I am aware of it, that I am lifting it for a certain purpose. Okay? But the machine is not conscious, aware of this purpose. मशीन को बनाया गया आपके इसरो में टू रिकॉर्ड द थिंग्स देयर बट द मशीन इज नॉट कॉन्शियस दैट आई एम वर्किंग हेयर फॉर ए स्पेस मिशन बिकॉज आई एम बिलोंगिंग टू इंडिया India must excel America, and so I must find out what is what. Can a machine think like this? Machine cannot think like this. लेकिन जो human being जिसने वो बना रहा है, he is working with this consciousness, feeling. हम Indians हैं, तो अमेरिका ने वहां पर भेजा है spacecraft, लेकिन अगर हम नहीं भेजेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे. इसलिए मैं भारतीय हूं, इसलिए मुझे जाना चाहिए. This feeling cannot be in the computer, correct? So this is the difference. This conscious lack of conscious awareness is the difference between man and machine. So let's try. कि अभी क्या हम ऐसी मशीन बना सकते हैं जो इंस्पायर कर सके ऐसे नए नए डिस्कवरीज को. कैन वी मेक ए साइंटिस्ट ए रोबोट साइंटिस्ट. कैन वी मेक ए मशीन हू इन वन डे वी एक्सपेक्ट एक दिन वो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के नए नए लॉज डिस्कवर करेंगे. कैन वी मेक ए सच ए मशीन. अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग है उससे हम मशीन बना रहे हैं. लेकिन क्या हम ऐसी मशीन बनाएंगे जिससे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. ही विल बी एबल टू डिस्कवर द थिंग द प्रिंसिपल द लॉज विच ए ह्यूमन बींग हु हैज मेड इट डज नॉट नो. सो वॉट इज द पॉसिबिलिटी, थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करें क्या पॉसिबिलिटी है. तो इस मैकेनिस्टिक अप्रोच के द्वारा के अंतर्गत इंस्पिरेशन को ऐसे एक्सप्लेन किया गया है, ट्राई किया गया है कि इंस्पिरेशन क्या है. कि जो हमारी जो ब्रेन है, ब्रेन मतलब न्यूरॉन्स, न्यूरॉन एक्टिविटी है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, वही हो रहा है जैसे कि एक कंप्यूटर के अंदर होता है. तो ब्रेन सक्षम है बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को करने के लिए. रैंडमली सो मेनी डिफरेंट इंटरेक्शंस, डिफरेंट थिंग्स आर हैपनिंग. सपोज ए साइंटिस्ट इज वर्किंग ऑन ए प्रॉब्लम, ए मैथमेटिशियन इज वर्किंग ऑन ए प्रॉब्लम कि इसका क्या सॉल्यूशन है. अभी ब्रेन जो है उसके अंदर सबकॉन्शियस लेवल पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज स्ट्राइक हो रही हैं रैंडमली, और समहाउ उन सभी लाखों लाखों पॉसिबिलिटीज में जो पॉसिबिलिटीज कॉन्शियस सेल्फ को सेटिस्फाई नहीं करती, कॉन्शियस सेल्फ की डिजायर है आई हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. अभी सबकॉन्शियस लेवल के अंदर बहुत सारी अलग अलग इक्वेशंस चल रही हैं, ठीक है, बिकॉज कॉन्शियस सेल्फ इज वर्किंग ऑन इट. इस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सब चल रही हैं रैंडमली. और जब वो कॉम्बिनेशन आ जाता है बाई रैंडम सेलेक्शन बाई चांस जो उसका आंसर है, इमीजिएटली द कॉन्शियस बिकम कॉन्शियस लेवल बिकम कॉन्शियस सेल्फ बिकम्स अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर पैटर्न एंड दैट्स हाउ इंस्पिरेशन होती है. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं. कि जस्ट इट इज नथिंग लाइक देर इज ए समबडी इज यू नो गिविंग द आंसर, बट इट इज जस्ट मैकेनिकल. कि बहुत सारे रिएक्शंस होते जा रहे हैं, बहुत सारे सिंबल्स मैथमेटिकल सिंबल्स स्ट्राइक होते जा रहे हैं सबकॉन्शियस लेवल में, और जब भी वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली के सिंबल्स हिट होते हैं इमीजिएटली द कॉन्शियस सेल्फ बिकम्स अवेयर दैट्स इट नथिंग मोर देन दैट. सो इज इट पॉसिबल. तो अगर हम इस पूरी ब्रेन को, आदमी की ब्रेन को देखें कि 100 साल के अंदर इस ब्रेन के अंदर कितने पॉसिबल पॉसिबिलिटीज हैं, इस ब्रेन के अंदर कितने पॉसिबल ऑप्शंस आ सकते हैं, तो उसको हम लोग उसको वर्कआउट किया गया है. कि यदि अपनी ब्रेन को हम डिवाइड करें कि एक क्यूबिक एंगस्ट्रॉम में, थोड़ा ये साइंस का टॉपिक है इसलिए जो थोड़ा इससे रिलेटेड है दे मे बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर. देयर इज अ यूनिट एंगस्ट्रॉम. सो वन क्यूबिक एंगस्ट्रॉम ब्रेन में यदि हम लें 1/1,000,000th of a second, एक सेकेंड के 1/1,000,000th of a second में एक ऑप्शन स्ट्राइक होता है, वन ऑप्शन. उसके बेस पर भी हम कैलकुलेट करें तो पूरी ब्रेन के अंदर 100 साल में, आदमी की आयु 100 साल में कितने कॉम्बिनेशंस, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं. सो दैट कम्स आउट टू समथिंग अबाउट 10^36, दैट इज द पॉसिबिलिटी. ओके, अभी हम देखें कोई मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितनी ऑप्शंस हैं, कितने सारे पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें से वो इक्वेशन एक पॉसिबिलिटी है. तो अगर हम देखें कि मैथमेटिक्स की यदि एक मॉडरेट प्रॉब्लम भी यदि हम सॉल्व करते हैं, जो लोग मैथमेटिक्स से थोड़ा जानकारी रखते हैं, तो जो मैथमेटिकल थ्योरम्स हैं उनके सॉल्यूशन कई बार इट कैन बी लाइक ए बुक, जो उसका एक्सप्लेनेशन है इट कैन रन इनटू मेनी मेनी पेजेस. एक्सप्लेनेशन, सो मेनी स्टेप्स, दिस स्टेप देन दिस स्टेप देन दिस स्टेप देन दिस स्टेप, सो मेनी कॉम्प्लेक्स. तो अगर हम किसी एक सिंपल एक मैथमेटिकल इक्वेशन को भी लें मॉडरेट डिफिकल्टी की, तो जितनी जितने कॉम्बिनेशन जितनी पॉसिबिलिटीज उसमें है, इट रन्स मच मोर देन दिस नंबर 10^36. व्हाई? बिकॉज इट ग्रोज एक्सपोनेंशियली. फॉर एग्जांपल, जैसे इफ वी स्टार्ट विद दिस पॉइंट, अभी इस पॉइंट पे मान लीजिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, फिर हर पॉइंट पे ऐसे दो दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो क्या होगा? इस स्टेप से ये सेकंड स्टेप, फिर ये थर्ड स्टेप, इसमें जो पॉसिबिलिटीज की जो संख्या है, इट इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल. सो वेरी सून जितना हम आगे जाएंगे, जितनी लंबी लॉजिक होगा, लॉजिकल प्रोग्रेशन जितना लंबा होगा, उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज इनसे बढ़ती है. जैसे कि पेड़, इट्स लाइक ए ट्री, वन स्टेम एंड देन टू ब्रांचेस, और फिर उस दो ब्रांच की और दो ब्रांचेस और दो ब्रांचेस और दो ब्रांचेस, और लास्ट में पेड़ कितना बड़ा. सो लास्ट लेवल पे हम देखें तो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं. तो उसमें से वो जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो एक एक पाथ है, जस्ट वन आउट ऑफ द मिलियंस. सो इफ यू कैलकुलेट दैट वे, इट इज मच मोर देन वॉट इज ऑल पॉसिबिलिटीज. राम 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 मिस्टर राम. सो इट इज मच मोर देन द ऑल पॉसिबिलिटीज इन द ब्रेन नेसेसरी टू सॉल्व वन मैथमेटिकल इक्वेशन. फिर ये जो मैकेनिकल अप्रोच है, इसमें और भी कुछ समस्याएं हैं कि जनरली जो मैथमेटिशियंस कई बार जो डिस्कवरी करते हैं, जो सॉल्यूशन लाते हैं, उन प्रॉब्लम्स को, वो जो इक्वेशंस, जो वो आंसर जो उनके मन में आया है, वो लिख के चले आते हैं. लेकिन उसको समझने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि वो कैसे इस रिजल्ट पे पहुंचे, कई बार कई कई साल बाद उसके जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं वो बाद में डिस्कवर होते हैं, जिसके बिना आप उस रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते थे. लेकिन जिस समय वो साइंटिस्ट ने उसको सॉल्यूशन दिया, उसको खुद उस समय पता नहीं था कि ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं. दे वर डिस्कवर्ड आफ्टर हिम, ही हैड नो आइडिया ऑफ दैट. सो इट मेक्स द सिचुएशन मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो ऐसे एक दो उदाहरण है. एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था बर्नार्ड रीमैन, जिसने जीटा फंक्शन डिस्कवर किया. तो उसने बहुत सारे थ्योरम्स फंक्शंस वो लिखा जीटा फंक्शन के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीटा फंक्शन. उसमें से कई साल लगे उन सबको समझने में, समझने में उसके उसको उसको प्रूव करने में, जो उसने दिया था उसको प्रूव करने में बहुत कई साल लगे. और अभी भी एक इक्वेशन ऐसी है जो अभी भी प्रूव नहीं हो पाई. हमारी 75 ईयर्स हो चुके हैं इस बात को, 75 ईयर्स से मैथमेटिशियंस आर ट्राइंग, स्टिल दे आर नॉट एबल टू प्रूव वन ऑफ द आइटम्स ऑफ इट. बट इट्स ट्रू, दे आर यूजिंग इट, दे नो इट इज ट्रू, दे आर यूजिंग इट, बट दे डोंट नो हाउ वी हैव कम टू दिस, इस पर हम कैसे पहुंचे. दे कैनॉट प्रूव इट, बट इट इज ट्रू, दे आर यूजिंग इट, बट दे डोंट नो हाउ टू प्रूव इट. यानी कि अभी भी कुछ चीजें ऐसी जो डिस्कवर होनी बाकी हैं, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स जिसके बेस पर वो प्रूव होगा. सो हाउ दैट साइंटिस्ट कुड हैव कम टू दिस आंसर, क्योंकि तब तक तो पूरे मैथमेटिक फील्ड में इट वॉज नॉट नोन. और यदि उसको पता होता सो ही वुड हैव मेड मेंशन ऑफ दिस थ्योरीज. लेकिन उसने भी अपने वर्क में कहीं इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, दैट दिस प्रिंसिपल ही मेड नो मेंशन अबाउट, दैट मीन्स ही वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ दिस प्रिंसिपल. सो फिर हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि अगर ब्रेन काम कर रहा है रैंडम प्रिंसिपल्स पर, रैंडम सिलेक्शन पर, तो अगर बेसिक प्रिंसिपल्स ही पता नहीं है तो किस बेस पर सिलेक्शन करेगा, कौन क्या सिलेक्शन करेगा. वो किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए भी तो कुछ आधार चाहिए ना. जब वो आधार ही नहीं पता आपको, जब प्रिंसिपल ही नहीं पता, तो किस बेस पर आप सिलेक्ट करोगे कि दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, ऑन वॉट बेसिस यू विल सिलेक्ट. देन अनदर प्रॉब्लम, जैसे हम मोजार्ट की जो म्यूजिक है उसको यदि हम स्टडी करने की कोशिश करें, तो उसमें इट इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट एंड रॉन्ग, इट इज नॉट जस्ट राइट एंड रॉन्ग, इट इज ए मैटर ऑफ ब्यूटी हार्मनी, वॉट इज प्लीजिंग टू यू नो नाइस मेलोडीज. इट इज नॉट लाइक रॉन्ग एंड राइट मेलोडीज, It is much more beyond this level of right and wrong melodies. It is what is soothing to the ears. कितना सुंदर है गान, कितनी उसके अंदर. So ये बहुत higher principles हैं. केवल सही और गलत की परिभाषा में हम नहीं इसको नाप सकते हैं. बहुत details, delicate चीजें हैं ये. तो कैसे कोई मैकेनिकली कैसे चूज होता है कि मोजार्ट का जो म्यूजिक का पैटर्न है वो ये पैटर्न विल बी सो नाइस, दिस पैटर्न विल नॉट बी सो नाइस. मैकेनिकली रैंडमली हाउ दिस विल बी सिलेक्टेड. अगर आप कह रहे हैं कि वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम, तो उसका तो ये है कि ये आंसर है और ये नहीं है, उसमें तो ब्लैक एंड व्हाइट है. सो ओके, यू मे ट्राई टू थिंक दैट कुछ सेलेक्ट होता है, लेकिन इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ यू नो इट्स अ ब्यूटी. सो इट इज नथिंग लाइक इट्स राइट और रॉन्ग. इट्स अ मैटर ऑफ दो म्यूजिशियन है, एक का म्यूजिक जो कंपाइल करता है, कंपोज करता है, इट इज यू नो फंटास्टिक. दूसरे का इट्स ऑल्सो नाइस बट इट्स नॉट सो नाइस. सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द एनहेंसमेंट इन द क्वालिटी ऑफ इट. तो फिर उसमें सिलेक्शन किस बेस पे करेगा, कौन करेगा? तो मैकेनिकली कैसे हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे? दीज आर द प्रॉब्लम्स जो ये हमारा मैकेनिकल मॉडल है इंस्पिरेशन को एक्सप्लेन करने में, इसमें ये सब फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट लोग एक आंसर देते हैं कि ठीक है, ये रैंडमली तो नहीं हो सकता कि रैंडमली कुछ वो हो रहे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसमें से कोई एक चूज करा. लेकिन ब्रेन के अंदर एक एल्गोरिदम है, न्यूरोनल सर्किट्स में एक एल्गोरिदम है, जो एल्गोरिदम फाइंड आउट करता है कि क्या सही आंसर है. सबकॉन्शियस लेवल पर ऐसी एल्गोरिदम है, इसलिए जरूरी नहीं है कि सब पॉसिबिलिटीज को स्ट्राइक करना पड़े, लेकिन एल्गोरिदम के द्वारा ब्रेन डायरेक्टली आंसर तक पहुंच जाता है. जैसे कंप्यूटर्स में एल्गोरिदम होता है, लास्ट टाइम ने डिस्कस किया था एल्गोरिदम. इफ यू हैव टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ ए नंबर, तो उसकी सिंपल एल्गोरिदम है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, 15 स्टेप्स. अगर आप 15 स्टेप्स फॉलो करेंगे, एट द एंड यू विल गेट द रिजल्ट. दिस इज बेसिक एल्गोरिदम. तो दिस इज अ साइंटिफिक प्रपोजल कि हमारी ब्रेन के अंदर ऐसी एल्गोरिदम है जो इतने सारे मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज में से स्कैन कर पाती है, यू नो फाइंड आउट, फिल्टर कर पाती है कि व्हाट इज द राइट आंसर, और इस तरीके से इंस्पिरेशन होता है. तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दे आर ट्राइंग टू वर्क आउट ऑन सच एल्गोरिदम्स विच कैन मेक थ्योरीज. इसको बोलते हैं थ्योरी फॉर्मिंग एल्गोरिदम्स, थ्योरी जिससे बने ऐसे एल्गोरिदम्स. तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो लोग इस पर वर्क करते हैं, सो दे आर एक्सपीरियंस कि ये एल्गोरिदम्स दे आर यू नो much more complicated than normal algorithms. They are very complicated algorithms. तो अगर हम ये algorithm का principle का प्रस्ताव देखें, तो इसमें दो समस्याएं हैं. एक समस्या तो कि algorithm कैसे बनी, how we came to this algorithm, how the algorithm was made. Algorithm means systematic steps, you know. तो जहां ये स्क्वायर निकालने के लिए सपोज यू नीड 10 स्टेप्स, तो इंस्पिरेशन के लिए कि एक नया थ्योरी डेवलप हो, यू नो द एल्गोरिदम में रन इनटू सम 1 लाख पेजेस, 1 लाख इंस्ट्रक्शंस, सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस. सो वो एल्गोरिदम कैसे डेवलप हुई ब्रेन के अंदर, वो लैक्स स्टेप्स, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, ऐसा स्टेप, इन ए वेरी लॉजिकल वे, परफेक्ट लॉजिकल वे, विच कैन मेक अस टू द कम टू दैट थ्योरी, न्यू अंडरस्टैंडिंग, न्यू थ्योरी. तो वो एल्गोरिदम कैसे बनी? तो यदि हम देखें कि ठीक है, मोजार्ट में वो एल्गोरिदम था जिससे कि बहुत वो ही कुड स्कैन कि हाँ ये उसका सबकॉन्शियस माइंड में कि ये है मेलोडी जो बढ़िया लगेगी, ऐसी कोई एल्गोरिदम है, ऐसी को बना नहीं पाया एल्गोरिदम. हाइपोथेटिकल अगर ऐसी कोई एल्गोरिदम थी, तो इसका मतलब जो उसके पेरेंट्स थे, तो वो एल्गोरिदम तो जीन्स के अंदर थी वो एल्गोरिदम. तो जो उसके पेरेंट्स हैं वो तो म्यूजिशियन नहीं थे. अभी उनके पेरेंट्स के जीन में और मोजार्ट के जीन में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अ फ्यू जीन्स, करेक्ट? सो वी कैनॉट एक्सपेक्ट सम जीनियस एल्गोरिदम टू कम आउट फ्रॉम अ यूजलेस एल्गोरिदम जस्ट बाय अ चेंज ऑफ फ्यू जीन्स. अगर एक एल्गोरिदम है, इट्स इज नॉट वर्किंग, और इसमें थोड़ा सा चेंज करने पर, फ्यू स्टेप्स चेंज करने पर जो एल्गोरिदम बनी, इट वर्क्स फंटास्टिकली. व्हाट डज दैट शो? कि जो पहले वाली एल्गोरिदम थी, एक्चुअली इट वॉज अ राइट एल्गोरिदम, लेकिन उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था कहीं एक दो स्टेप पे, तो एक दो स्टेप सही करने से तुरंत इट स्टार्टेड वर्किंग, देन ओनली इट इज पॉसिबल, करेक्ट। तो इसका मतलब कि उसके पेरेंट्स और उसके पुश्तों में जो ये एल्गोरिदम का जीन था ये हिडन था, और मोजार्ट में ऐसी म्यूटेशन हुई कि सडनली वो जो हिडन था, जो चीज जो छिपा रही थी, वो हट गई और इट बिकेम एविडेंट, दैट इज ओनली पॉसिबिलिटी। तो फिर प्रश्न ये आता है कि उसके जो पूर्वज थे कई कई जनरेशन पहले, उन लोगों में ये एल्गोरिदम कैसे डेवलप हुई। तो डार्विन के अनुसार किसी एक स्पीसीज में तो डेवलप नहीं हो सकती, कई स्पीसीज में धीरे धीरे ट्रांसफर हुई होगी, स्टेप बाय स्टेप डेवलप हुई होगी। क्योंकि अगर हम बोलें कि ये मोजार्ट के अंदर अचानक डेवलप हो गई पूरी की पूरी एल्गोरिदम, तो फिर तो वही प्रश्न है कि कोई भी इन्वेंशन कैसे हुई इतने सारे कॉम्बिनेशन में से, वही क्वेश्चन इसके लिए उठाया जाए कि एल्गोरिदम कैसे बनी, हजार हजार पॉसिबिलिटीज में से एल्गोरिदम कैसे बनी। सो ऐसे नहीं, ओके, इसका एक्सप्रेशन साइंटिस्ट कह रहे हैं नहीं, ये धीरे धीरे डेवलप हुई जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो कैसे डेवलप हुई कि एक म्यूटेशन हुआ, अगर वो चीज बेनिफिशियल थी उस स्पीसी के लिए तो वो म्यूटेशन कैरी हुई नेक्स्ट जनरेशन में, और फिर नेक्स्ट जनरेशन में कुछ और म्यूटेशन हुई, फिर वो जो फेवरेबल थी वो कंटिन्यू हुई थर्ड में, और ऐसे मिलके धीरे 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 कई जनरेशन के बाद में मिलकर के वो परफेक्ट वो म्यूटेशंस हुई लास्ट में रिजल्ट जिससे वो बना। तो अभी जैसे मोजार्ट का म्यूजिक का कंपोज करना है, तो उसके पूर्वज अकॉर्डिंग टू द साइंस, मोजार्ट के पूर्वज कौन थे, हम सबके पूर्वज कौन थे मॉडर्न साइंस के अनुसार, बंदर थे और वो हंटर थे। अभी हंटर की कम्युनिटी में तो गान म्यूजिक बहुत हाई लेवल का नहीं होता ना, करेक्ट। तो उन लोगों में तो ये हाई म्यूजिक को सुनाने का भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ होगा, तो उसका वो बेनिफिट है कि नहीं है ये कैसे डिसाइड हुआ होगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, व्हेन यू आर नॉट इवन यू नो यू विल नॉट इवन ब्रिंगिंग इट आउट इन द पब्लिक, हाउ यू विल नो दैट दिस इज फाइन, दिस इज नाइस मेलोडी, दिस इज नॉट नाइस मेलोडी, करेक्ट। तो फिर ये कंटिन्यू कैसे हुआ होगा एल्गोरिदम। सो अल्टीमेटली नटशेल, दिस एल्गोरिदम ओरिजिन क्या है, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम अगेन, सेम प्रॉब्लम। जो थ्योरी डेवलप होने के लिए प्रॉब्लम थी वही एल्गोरिदम डेवलप होने के लिए प्रॉब्लम है। दूसरा कि सब्जेक्टिव अवेयरनेस ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेप्स, एल्गोरिदम थी, चलो मान लिया एल्गोरिदम थी, एल्गोरिदम की वजह से आप नई थ्योरीज डिस्कवर कर रहे हैं, लेकिन उस नई डिस्कवरी के जो इंटरमीडिएट स्टेप हैं, व्हाई वी डोंट बिकम कॉन्शियस ऑफ दोज इंटरमीडिएट स्टेप्स, बिकॉज एल्गोरिदम मीन्स देयर इज सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिससे कि हम लास्ट तक पहुंचे हैं, करेक्ट। तो हम केवल फाइनल कंक्लूजन को ही अवेयर हमारी अवेयरनेस में आता है, और बीच के स्टेप्स क्यों अवेयरनेस में नहीं आते। मैं जो कह रहा हूं वो प्रश्न सही में आ रहा है। सो इस प्रकार से ये जो मैकेनिकल अप्रोच है इंस्पिरेशन को समझाने की, इससे अभी तक की जो अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, उससे हम नहीं समझा सकते हैं कि कैसे ये इंस्पिरेशन आती है वैज्ञानिकों में जिससे ये सब खोजें होती हैं। तो इसके विपरीत एक दूसरी अप्रोच है, नॉन मैकेनिस्टिक अप्रोच, जो भगवद्गीता की अप्रोच है, जो समझाती है कि ये इंस्पिरेशन कहां से आती है, वैज्ञानिक या किसी व्यक्ति के अंदर ये इंस्पिरेशन कहां से आती है। तो भगवद्गीता की अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, फिलॉसफी के अनुसार, सबसे पहले तो जो कॉन्शियस सेल्फ है, जो जीव है, वो ही कैनॉट बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इन मैकेनिस्टिक टर्म्स, प्योरली मैकेनिस्टिक टर्म्स, केवल मात्र मैकेनिकल प्रिंसिपल्स के आधार पर वी कैनॉट एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ए ह्यूमन बींग। सो ए ह्यूमन बींग, एक व्यक्ति, एक जीव, अंततः एक नॉन फिजिकल एंटिटी है, विच इज नॉन रिड्यूसिबल टू द बेसिक फिजिकल लॉज। जीव अंततः एक ऐसी एंटिटी है जिसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं सिंपल फिजिकल चीज में, नहीं तो जितना भी भौतिक है उसको हम सबको ब्रेक डाउन कर सकते हैं इंटू सिंपल फॉर्म्स, करेक्ट। जैसे अभी ये माइक है, अब ये माइक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक्चुअली अगर हम इसको डिटेल में जाएं तो वी कैन, इफ यू फाइंड इज फंक्शन एट द रूट इज वेरी सिंपल फंक्शंस, बट व्हेन दी सिंपल थिंग्स कंबाइन टुगेदर इन लॉजिकल वे दे गिव राइज टू वेरी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन। लाइक कंप्यूटर, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. तो कंप्यूटर्स हार्डवेयर में क्या क्या है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन अ कंप्यूटर. सो देर आर सम माइक्रोचिप्स, देर आर सम माइक्रो मैग्नेट्स, उसके अंदर सम पैटर्न्स आर चेंजिंग, दैट्स ऑल. लेकिन वो इस प्रकार से लॉजिकल तरीके से अरेंज की होती हैं बाय द प्रोग्रामर, बाय द हार्डवेयर इंजीनियर, कि व्हेन द सिंपल थिंग्स आर कनेक्टेड इन अ प्रॉपर वे दे गिव राइज टू वेरी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, करेक्ट. लेकिन अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, जो जो व्यक्ति है आप उसको ऐसे सिंपल फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते. इट इज नॉन रिड्यूसिबल, इट इज नॉन रिड्यूसिबल इनटू सिंपलर फॉर्म्स. एक्चुअली एक बहुत सुंदर एक वाक्य एक साइंटिस्ट ने दिया है, नील बोर, आई थिंक नील बोर, या इफ यू रिफ्लेक्ट ऑन इट, इट्स वेरी, समबडी इज टॉकिंग आउटसाइड आई थिंक, ओके. सो ही सेड, इन सर्च ऑफ माई, इन माई सर्च ऑफ लाइफ, जीवन की खोज करते हुए आई एंडेड अप इन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विच डेफिनेटली हैव नो लाइफ. समवेयर ऑन द वे लाइफ स्लिप्ड अवे फ्रॉम माई फिंगर्स एंड इन द एंड ऑफ माई लाइफ आई एम रिट्रेसिंग माई पाथ. क्या बोलता है कि जीवन की खोज करते करते मैं अल्टीमेटली कहां पहुंच गया, कि आदमी से शुरू किया. आदमी किसका बना है, वो एटम मॉलिक्यूल्स का बना है. मॉलिक्यूल्स किस चीज के बने हैं, एटम्स के बने हैं. एटम्स किस चीज के बने हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के बने हैं. सो अल्टीमेटली ही केम डाउन टू न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स एंड सो मेनी विच वेरी क्लियरली हैव नो लाइफ. इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैव नो लाइफ. सो ही इज सेइंग अल्टीमेटली एंडेड अप विद इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विच डेफिनेटली हैव नो लाइफ, और नाउ आई एम रिट्रेसिंग माई पाथ. वापस जा रहा हूं, कहीं ना कहीं बीच में रास्ते में से जीवन कहीं स्लिप हो गया मेरी फिंगर से. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग टू द साइंटिस्ट. हर चीज को एक्सप्लेन करते करते अल्टीमेटली दे एंड अप विद सिंपल थिंग्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी. अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, मेडिसिन आपने पढ़ा है थोड़ा, तो आप देखेंगे ये ब्रेन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे काम कर रहा है. देखो एक छोटा सा बच्चा, ये राम, इज जस्ट ए स्मॉल बॉय, बट ही कैन डू कॉम्प्लेक्स थिंग्स. यू नो ही कैन प्ले, ही कैन, व्हाट इज दिस, इसको ऐसे बजाना है. एक कंप्यूटर को ऐसे काम करने के सिखाने के लिए यू नो सो मेनी इंस्ट्रक्शंस आर नीडेड. ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है. आप एक पानी का ग्लास पकड़ना और उसको यहां तक लाना, इट्स नॉट ए सिंपल थिंग, इट्स नॉट ए सिंपल थिंग. अगर उसको मशीन से करवाना हो वही काम को, यू नो लैक्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस विल बी नीडेड जस्ट टू कैरी आउट दिस, इमिटेट, और वो भी अच्छे से नहीं होगा. अगर नया मेटल आ गया कोई जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीड नहीं हुई है, तो यू विल नॉट बी एबल टू लिफ्ट इट. लेकिन एक ह्यूमन बींग है, जस्ट नेचुरली बच्चे को तो कोई नया चीज है तो भी वो ही विल मैनेज इट. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. लेकिन अल्टीमेटली अगर हम बायोलॉजिक दृष्टि से देखें, तो अगर हम ब्रेन की स्टडी करते हैं, तो ये सब क्या होता है अल्टीमेटली, देर आर वेरी सिंपल पंप्स नर्व्स के अंदर, सोडियम पंप्स, क्लोराइड पंप्स. तो मैसेज कैसे ट्रांसफर होता है, कुछ सोडियम आयन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस साइड ऑफ मेम्ब्रेन टू द अदर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, एंड देन सम आर ट्रांसफर्ड अदर वे, एंड इन दिस वे द मैसेज इज ट्रांसफर्ड. ऐसे सिंपल केमिकल्स का आना जाना होता है रूट लेवल पर, यही हो रहा होता है. लेकिन उस सबको इस प्रकार से वो अरेंज होता है, और उसके साथ में कुछ और होता है जो हम नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन काम करता है जैसे वो काम कर रहा है. सो एक्चुअली साइंटिस्ट की इन्वेंशन खुद उनको ये विश्वास करने पर मजबूर करती है कि मैन इज नॉट जस्ट मशीन. क्योंकि जब मशीन बनाते 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 दे फाइंड कि मशीन में तो क्या है, मशीन मीन्स सिंपल माइक्रोचिप्स, एंड माइक्रोचिप्स हैव नो लाइफ. सो देन वेयर इज अ लाइफ. सो दैट मीन्स दो विद माइक्रोचिप्स यू कैन डू सो मेनी थिंग्स व्हाट अ ह्यूमन बींग कैन डू, बट स्टिल इट इज नॉट लाइफ. दैट मीन्स लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज माइक्रोचिप्स एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रोचिप्स. तो उसी प्रकार से जो बायोलॉजिस्ट है वो जब देखता है कि अल्टीमेटली बॉडी में जो सब केवल सिंपल केमिकल्स हैं, तो फिर जीवन कहां है, केमिकल्स में भी जीवन नहीं है तो फिर जीवन कहां है फिर. सो ही इज फोर्स्ड टू कम टू दिस कंक्लूजन दैट देयर इज लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम दिस केमिकल्स. सो केमिस्ट्री ऑफ इंस्पिरेशन, सो केमिस्ट्री ऑफ इंस्पिरेशन इज एक्चुअली इट्स नॉट केमिकल, दैट इज अ केमिस्ट्री ऑफ इंस्पिरेशन. इट इज बियॉन्ड केमिस्ट्री, इट इज बियॉन्ड फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री के बियॉन्ड है. तो भगवद गीता के अनुसार जो हम देखते हैं जो ज्यादा तर्क संगत है और जिससे सब समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग से, क्या है कि एक जीव है और एक परमात्मा है. हर जीव के हर शरीर में दो एंटिटीज हैं. सो लेट्स सी व्हाट भगवद गीता कृष्णा सेज, कृष्णा फिलॉसफी. परफेक्ट फिलॉसफी. 15 चैप्टर टेक्स्ट 15. सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम. भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती है. डायरेक्टली ही इज आंसरिंग इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम मी. आई गिव द रिमेंबरेंस फॉरगेटफुलनेस एंड नॉलेज टू एवरी लिविंग एनिटी. मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं. निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूं. फिर भगवान आगे कहते हैं द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते. जीव दो प्रकार के हैं. देर आर टू लिविंग एनिटीज. जीव दो प्रकार. देर आर टू लिविंग एनिटीज च्युत और अच्युत. च्युत मीन्स जो इस भौतिक जगत में बधित है, प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर है. और वो जीव जो प्रकृति के गुणों से बंधे हुए नहीं है, जैसे कुछ हैं कैदी और कुछ हैं सिविलियन, क्रिमिनल्स एंड सिविलियंस. सो सिमिलरली देर आर टू टाइप्स ऑफ लिविंग एनिटीज. च्युत यानी जो भौतिक जगत में प्रकृति के प्रभाव में अंदर है, और कुछ हैं जो उससे मुक्त हैं. भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है. भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है. ही इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस थ्री मोड्स. और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो लिविंग एनिटीज हैं दे आर बियॉन्ड दिस लॉज ऑफ मेटेरियल नेचर. दे आर फ्री फ्रॉम लॉज ऑफ मेटेरियल नेचर. अच्युत. फिर भगवान बोलते हैं उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदार्थ यो लोकत्रयमाविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर. इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है. इन दोनों आत्माओं के अतिरिक्त, इन दो प्रकार के लिविंग एनिटीज के अतिरिक्त एक और जीव है जो भगवान है. उत्तम ही इज उत्तम. ही इज बियॉन्ड हायर देन ऑल दिस टू टाइप्स. उत्तम पुरुषस्तु अन्यम एंड ही इज ए पुरुष. ही इज ए पर्सन. पुरुषस्तु अन्य एनदर. परमात्मा इति उदाहरतः. जिसको क्या बोलते हैं? परमात्मा बोलते हैं. जिसको परमात्मा बोलते हैं. यो जो. यो मतलब जो. लोकत्रयम आविश्य तीनों लोकों में एंटर करके. स्वर्ग लोक, भूलोक, पाताल लोक. थ्री डिविजन्स आर देयर. इन तीनों में एंटर करके विभर्ति अव्यय ईश्वर. विभर्ति मीन्स मेंटेन्स. हु इज मेंटेनिंग दिस ऑल क्रिएशन? अव्यय. एंड व्हाट इज हिज नेचर? अव्यय. ही इज इनडेस्ट्रक्टिबल. ईश्वर एंड कंट्रोलर. तो देन कृष्ण से यस्मात् अक्षरतीतोहम शरादपि च उत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतिथ पुरुषोत्तमः. चूंकि मैं शर तथा अक्षर दोनों के परे हूं. जो पहले श्लोक में बताया कि शर अक्षर दो प्रकार के जीव हैं. क्योंकि मैं दोनों से परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं. तो जो पिछले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि शर अक्षर दोनों से परे भगवान हैं जो सबको मेंटेन करते हैं. नाउ कृष्ण इज अफर्मिंग दैट इज मी. दैट परमात्मा इज मी. वो परमात्मा मैं हूं. तो इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान के माध्यम से हम जानते हैं कि ये भगवान जो हमारे हृदय में बैठे हैं वो हमें मार्गदर्शन देते हैं. एक और श्लोक में भगवान बताते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानां यंत्ररूढानि माया. भगवान सभी के हृदय में बैठकर सब लोग जो यंत्र में बैठे हैं, ये शरीर एक यंत्र के समान है, और भगवान उन सब जीवों को यंत्र में बैठा करके घुमा रहे हैं. 84 लाख प्रकार की योनि में भ्रमण करा रहे हैं. जैसी जैसी जीव इच्छा करता है, जैसे जैसे कर्म करता है, उसके अनुसार उसे उस प्रकार का यंत्र दिया जाता है, इच्छा के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार. और फिर उस यंत्र को कैसे चलाना है वो जानकारी भी भगवान देते हैं. जैसे अभी छिपकली है. अभी छिपकली का बच्चा जैसे जन्म लेता है, आपने देखा होगा, तुरंत उसके अंदर बुद्धि आती है कि कैसे मच्छर पकड़ना है, मच्छर मेरी डाइट है, उसको कोई वो ना स्कूल में नहीं जाना पड़ता है? एक गाय का बच्चा है, जन्म लेते ही तुरंत वो माँ के स्तन, गाय के स्तन की तरफ भागता है दूध पीने के लिए। अभी तो जन्म हुआ ही है, लेकिन उसे पता है कि मेरा पोषण कहां है। नाउ फ्रॉम वेयर दिस इंटेलिजेंस, फ्रॉम वेयर दिस गाइडेंस इज कमिंग। हर जीव की अलग अलग खाने की, खाने का उसका आहार अलग अलग है, उसके खाने का तरीका अलग अलग है, और वो सब जन्म से ही तुरंत उसके अंदर वो सब पर्याप्त मार्गदर्शन कहां से आता है। और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तभी तुरंत दूध की उत्पत्ति मां के स्तन में तभी होती है, एट दैट टाइम। हाउ इज दैट? नाउ वन वे इज दिस इज जस्ट बाय यू नो सम लॉजिकल सम इवोल्यूशन ग्रेजुअल, बट इफ यू आर यू नो थिंक केयरफुली हाउ कैन यू सच ए नाइसली फाइनली ट्यून्ड थिंग कैन बी जस्ट एक्सप्लेन आउ रैंडम चांस। जैसे सेम थिंग भगवदगीता, ये रचना कैसे हुई है, भगवदगीता ज्ञान कैसे आया, डार्विन अकॉर्डिंग टू डार्विन कैसे आया कि एक दिन प्रिंटिंग प्रेस में जबरदस्त विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद सब वर्ल्ड लेटर इधर उधर बिखर गए और ऐसे बिखरे कि ये भगवदगीता का यू नो इट केम इन द फॉर्म ऑफ भगवदगीता। अचानक रेंडमली ऐसे विस्फोट हुआ कि बस ऐसे बाई चांस इट जस्ट अरेंज एंड सच हाई नॉलेज केम इन टू एग्जिस्टेंस यू नो भगवदगीता। So you can say that. I think that it is like this. So that you can say. Again, is it really possible to say like this? Like this watch. I always give this example watch. It's such a you know simple instrument, but it's such a complicated instrument. So kya hua ki lohe ki khan mein barood phuta aur bhi bahut sari HMT aur alag alag company ki watch nikal ke bahar aa gayi. How is it possible? There needs to be a very, you know, sophisticated brain working on it to make watch out of gold, you know, iron mine. So, to आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो चार शरीर की आवश्यकताएं हैं, इसकी सबकी जानकारी हर जीव को जन्म से होती है। इसके लिए कोई एजुकेशन जो कहीं नहीं है, किसी को एजुकेशन नहीं दी जाती कि कैसे खाना है और क्या खाना है, हा? और आहार निद्रा भय और संतान पति कैसे, ऐसी कोई एजुकेशन जरूरत नहीं। दिस इज इनबिल्ट एवरी लिविंग एंटिटी। लेकिन दुर्भाग्य से मॉडर्न आदमी क्या सोच रहा है, नहीं नहीं वी नीड टू गिव दिस एजुकेशन हाउ टू संतान, हाउ टू हैव सेक्स, इसके लिए एजुकेशन या एजुकेशन में लगाया जा रहे हैं जानवरों को। दे डोंट नीड दिस एजुकेशन एंड ए ह्यूमन बींग नीड दिस एजुकेशन। कितने यू नो वी आर बेटर देन एनिमल्स नाउ। सो और पूरा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है नाउ दिस विल गो फॉर 5 मिनट्स, नहीं ह्यूमन एडवांसमेंट। सो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसमें कितना हमको सिस्टमेटिकली सिखाया जाता है कि 25 साल की ट्रेनिंग मिलती है हाउ टू गेट योर फूड। अल्टीमेटली जो हमें एजुकेशन मिल रही है व्हाट इट टीचेस अस हाउ टू गेट योर फूड, कितना टाइम लगता है उसको, 25-30 साल लग जाते हैं आदमी को सीखने में हाउ टू गेट हिज फूड। और छिपकली को कितना टाइम लगता है सीखने में हाउ टू गेट हिज फूड, नो टाइम, इट जस्ट बाय बर्थ इट जस्ट नोज। मच्छर है खाना है, कुत्ता है उसका बच्चा है उसको पता है, लेकिन आदमी को 25-30 साल लग जाते हैं सीखने में हाउ टू गेट हिज फूड। दिस इज कॉल्ड मॉडर्न एडवांस। सो एक्चुअली परमात्मा के द्वारा ये सब इनबिल्ट है, और न केवल ये इनबिल्ट है बल्कि फर्दर ह्यूमन बींग्स के अंदर जैसी जैसी हमारी इच्छा होती है उसके अनुसार भगवान हमें गाइड करते हैं गुणों के द्वारा, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के द्वारा, कि आपके जीवन में आपकी इच्छा थी ये प्राप्त करने की, आपको इस प्रकार का शरीर दिया, अभी आप ऐसा कार्य करो इससे आपको ये मिलेगा। लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग दिस पॉइंट। सो इन दिस वे परमात्मा इज गाइडिंग, ही सिटिंग इन आवर हार्ट। सो परमात्मा फिर उसका कार्य, उसकी उपमा दी है भगवदगीता में, उदासीनवत आसीनम, उपद्रष्टा अनुमंता च। व्हाट इज हिज पोजीशन, व्हाट इज फंक्शन, ही इज लाइक ए ओवरसियर, उपद्रष्टा, ही इज ओवरसियर। what this living entity is desiring and what he is working, he is overseeing this. Or phir anumanta, according to that sanction. You want this? Okay, and what's your work record? Okay, you are eligible, aapne manga itna, but your work is giving you permission for this sanction. Take this. Maya, according to Maya energy, give him body accordingly, that he can enjoy this thing. Aisa shari usko de do. Isko bahut maas khane ki ichcha hai. Achha, yaha maan lijiye, ek aur udhaharan le. Isko leader banne ki ichcha hai. Aadmi hai. हमेशा लीडर बनने, इसको कॉलेज में गया तो वहाँ यूनियन लीडर, एनएससीआई लीडर और एबीवीपी लीडर और दिस लीडर, फिर आगे युवा कांग्रेस मंडल और फिर ये मंडल और वो, एवरीवेयर वेयर एवर ही गोज ही वांट्स टू बिकम लीडर. ठीक है, लेकिन अभी काम कैसे किए हैं? झूठ बोलना, मारना, मांस खाना, सब ऐसे काम जो जानवर करते हैं वो काम किए उसने, सब आदमी ऐसे काम नहीं किए. सो देन परमात्मा सीन हिज डिजायर टू बिकम लीडर एंड हिज वर्क is making him equivalent to animal, so then he will fulfill his desire to be a leader of an animal society. Kutto ke andar sabse bada kutta, bulldog, is a leader of the dogs. So his desire is fulfilled according to his karma. So this way har ek ko alag alag milta hai. Jaise manushya ke andar bhi aap dekho, sabke andar alag alag characteristics hain, hai na? अलग कैसे आई है, कहा है, क्यों अलग अलग है, सब भिन्नताएं कैसे आई है? तो एक एक्सप्लेनेशन है बाय चांस इज एज गुड एज सेइंग वी डोंट नो, बट इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग दैट वी डोंट नो वी से बाय चांस. बट अवर शास्त्र गिव्स डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट. कैसे आती है कि उपद्रष्टा अनुमंता, वो साक्षी हैं जो हमारे हृदय बैठे हैं, एंड ही सीन. और जैसा करोगे उदासीन वदासीन, उन्हें कुछ लेने देना नहीं है. जैसे जज होता है, जज को कोई लेने नहीं है कि कोई आदमी गुनाह करा है क्या करा, जैसा करोगे मैं तो वैसा जजमेंट दे दूंगा, दैट्स इट. किसी को चाहे फांसी सजा हो, चाहे किसी को करोड़ रुपए इनाम में मिले, उसे जज को उससे कोई लेने नहीं. जज इज नॉट इंस्पायरिंग समवन कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा मत करो, दैट इज नॉट हिज वर्क. जज का काम तो केवल ये है, इफ यू डू दिस यू डू दिस, ऐसा मिलेगा, ऐसा करो, ऐसा. सो परमात्मा हम सबके हृदय में इस प्रकार से बैठे हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे. ओके, लेकिन परमात्मा, जब हम भगवान की तरफ आने की इच्छा करते हैं, इस भौतिक जगत से बाहर आने की जब हम इच्छा करते हैं, तब भगवान वो एक न्यूट्रल जज की तरह से नहीं रहते फिर. बिकॉज नाउ यू आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ कर्मिक रिएक्शन, कर्मा. जब तक आप कर्म के अंदर हो, कर्म मतलब भौतिक जगत को भोग करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आता है. उसका तो नियम है, पाप पुण्य के अनुसार आपको उसका परिणाम वैसा वैसा मिलता है. देयर इज नो इंटरफेरेंस इन इट, डायरेक्ट इंटरफेरेंस. लेकिन जब आप भगवान की तरफ आने की कोशिश करते हो कि अभी मुझे कर्म नहीं करना है, अकर्म करना है. अकर्म मीन्स भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर्म करना है. जब भगवान हमारे हृदय में ये इच्छा देखते हैं कि अभी ये मेरे पास आना चाहता है, इस भौतिक जगत में भोग नहीं करना चाहता, मेरी सेवा करना चाहता है, तब भगवान न्यूट्रल जज की तरह नहीं रहते. तब भगवान हमें मदद करते हैं, वो बुद्धि देते हैं जिससे हम उनके पास आ सके. देन ही पर्सनली टेक्स हेल्प. जैसे एक राजा, एक बार अकबर, तो बताया कि भगवान जो है, भगवान तो अकबर और बीरबल का संवाद हो रहा था कि भगवान भी तो पार्शियल है, वो भी तो अपने भक्तों का ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो ये पार्शियलिटी हुई. सो बीरबल, नहीं ये पार्शियलिटी नहीं है. कैसे नहीं? तो बोला मैं आपको समय पर बताऊंगा कैसे नहीं. तो एक बार राजा जो है सब वो नौका विहार पे जा रहे थे, वो रेस होती है कि भाई नौका की, ऐसे उसमें भी जा रहे थे. तो बैठे थे, उनकी पूरा घर के सब लोग बैठे थे, राजा के सब लोग बैठे. तो अलग अलग नौका में, हर एक नौका में वो भी था ना एक्सपर्ट स्विमर, कि कोई आदमी यदि गिर जाए, डूब रहा हो, तो उसको कैसे बचाना है. ठीक है, तो बीरबल ने क्या किया, अकबर के बच्चे को, छोटा था, उसको उठा करके फेंक दिया पानी में. तो राजा जैसे ही देखा कि वो बच्चा मेरा गिर गया है, तुरंत छलांग लगाई पानी में उसको निकालने के लिए. तो फिर वो निकाल के बाहर आया, बोला बीरबल तुमने क्यों किया? सो बोला देखो, आपको पता है कि इतने सारे लोग हैं एक्सपर्ट स्विमर जो आपने लगाए हुए हैं सब लोगों को बचाने के लिए, इतने लोग गिरते हैं, वो सब उनको वही बचाते हैं, लेकिन जब आपका बच्चा गिरा, then you didn't wait for them, you know, आपने उनको बुलाया नहीं, ए बचाओ उसको, Javaka Bachagar, you yourself just went. So that is natural. This is not partiality. You have already arranged for everybody. So Bhagwan jo hai, sabko open chance de rahe hai. You can all become devotees. Krishna is not saying that you cannot become devotee. So how is partial? He is open to everyone. जैसे अभी एंट्रेंस एग्जाम है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, इट्स ओपन फॉर एवरीवन. जिसको भी आना है आप एंट्रेंस में भाग लो. गवर्नमेंट इज नॉट सेइंग यू कैन नॉट बिकम डॉक्टर और यू कैन नॉट बिकम इंजीनियर, इट्स ओपन फॉर ऑल. लेकिन क्वालिफाई तो करना पड़ेगा. यू आप बोलो कि अरे मैं तो 10 मार्क्स आए, मेरे को डॉक्टर नहीं बनने दिया, पार्शियल है गवर्नमेंट. सो दैट इज नॉट द ट्रूथ. यू हैव टू क्वालिफाई. चांस वॉज गिवन टू, इट वॉज ओपन. तो ऐसे ही भगवान सबको मौका दे रहे हैं. आप सब भक्त बनो, भगवान सबको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं. इफ यू आर रेडी देन कृष्णा इज रेडी. दैट इज नॉट पार्शियलिटी, दैट इज नॉट पार्शियलिटी. तो परमात्मा जो है इस प्रकार से हमारे हृदय के अंदर बैठ करके और हमें गाइड कर रहे हैं. लेकिन जब हम भगवान की तरफ आने की इच्छा करते हैं तब भगवान स्पेशल हमारी मदद. इसलिए कहता है आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाओ, भगवान आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाए. लेकिन आपको एक कदम बढ़ाना होगा. तो जो भक्ति होती है वो कर्मों के सिद्धांत के द्वारा नहीं होती, वो इससे परे है. दैट इज बियॉन्ड कर्मिक एक्शन. ऐसा नहीं कि कोई भक्त बना जिसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए भक्त बना. इट्स नॉट लाइक दैट. कोई पुण्य कर्म करने से, भौतिक पुण्य कर्म करने से कोई भक्त नहीं बनता है. हाँ, आध्यात्मिक सुकृति, कुछ सुना भगवान के बारे में अनजाने में, भगवान का विग्रह का दर्शन कर लिया, कोई प्रसाद ले लिया अनजाने में, उससे भक्ति मिलती है. लेकिन भौतिक कर्म करने से, भौतिक पुण्य कर्म करने से भक्ति नहीं मिलती. गरीबों को खाना बांटने से, कुएं खुदवाने से, इससे भक्ति नहीं मिलती. लेकिन आपने कुआं खुदवाया और उसमें भगवान के एक भक्त बहुत प्यासा था, उसने आके पानी पिया, वो स्पिरिचुअल सुकृति मिलेगी उससे. तो इस प्रकार से भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हैं. न दत्ते का सचिद पापम न चैव सुकृतम विभुम. भगवान कहते हैं मुझे किसी के अच्छे बुरे से कोई लेने देना नहीं. अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंती जंतवा. सब लोग अपने अज्ञान से घिर करके कार्य कर रहे हैं. मैं किसी को बुरा या अच्छा करने के लिए विवश नहीं कर रहा हूं. लेकिन भगवान हम सबको भगवद गीता का संदेश दे रहे हैं कि पाप और पुण्य दोनों से बाहर निकलो. आप पाप और पुण्य के विषय में तो भगवान न्यूट्रल है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, आप पाप और पुण्य दोनों से निकलो. क्योंकि पाप करना और पुण्य करना दोनों ही भौतिक जगत के अंतर्गत के कार्य हैं. पाप करने से भौतिक दुख मिलता है, पुण्य करने से भौतिक सुख मिलता है, लेकिन रहना तो इसी भौतिक जगत में पड़ता है. इससे भगवान भगवद गीता के अंदर संदेश दे रहे हैं कि आप पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठो. दोनों से ऊपर उठो मतलब क्या करो, भक्ति करो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करो. पुण्य कर्म है भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए कार्य. बुरा मत बोलो, अच्छा करो, दान दो, भौतिक, ये सब भौतिक पुण्य कर्म है. इससे करने से क्या होगा, आने वाले समय में अच्छा जीवन प्राप्त होगा, अच्छी एजुकेशन प्राप्त होगी, अच्छा शरीर प्राप्त होगा, और धन संपत्ति मिलेगी, और उच्च लोकों को जाने को मिलेगा, स्वर्ग लोक को जाने को मिलेगा. ये सब होता है पुण्य कर्म से. लेकिन रहना तो फिर भी इसी बहुत ही जगत में पड़ेगा, फिर भी तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि आएगी. इसलिए भगवदगीता का संदेश क्या है, नो ट्रांसेंड दिस बोथ. अच्छे और बुरे दोनों को बाहर करो और केवल मुझे संतुष्ट करने के लिए. जैसे अर्जुन, तो अर्जुन क्या सोच के आया है मैदान में युद्ध करने के लिए, कि मैं अपने राज्य का भोग करूंगा. अब ये लोगों ने मेरा राज्य हड़प लिया है, इनको मार दूंगा और अब राज्य का भोग करूंगा. तो ये क्या था, तो ये एक प्रकार का, इसको हम पाप कर्म भी कह सकते हैं, कि भोग करने की इच्छा से सबको मारने की इच्छा. फिर उसने क्या विचार किया, नहीं मैं नहीं मारूंगा, मैं खुद जंगल चला जाऊंगा, सब छोड़ के. तो त्याग, ठीक है, पुण्य कर्म, मारा नहीं. लेकिन अर्जुन ने अंत में क्या किया, भगवान की इच्छा है ये जानते हुए युद्ध किया और शत्रुओं को मारा, कि भगवान चाहते हैं कि मैं इनको मारूं. मैं अपने लिए नहीं मार रहा हूं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि राजा एक हम बने, धार्मिक बने, जो कि भगवान की तरफ सबको ले जा सके, ना कि दुर्योधन जैसे लोग राजा बने जो नास्तिक हैं. क्योंकि वो प्रजा को भगवान की तरफ नहीं ले जा सकते. इसलिए भगवान की इच्छा है कि पांडव राजा बने पूरे देश के, पूरे पृथ्वी के, इसलिए मैं युद्ध करूंगा. तो फिर ये क्या हुआ, ये अकर्म हुआ, पाप और पुण्य दोनों से ऊपर ये भक्ति हुई. इससे भगवान अर्जुन युद्ध करे क्या बोले, करिष्ये वचनम तवा, अभी आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा. दैट इज नाउ आई अंडरस्टूड हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है. करिष्ये वचनम तवा, अभी आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा. तो ये है डिफरेंस भक्ति में और पाप पुण्य में. तो इस प्रकार से भगवान हमें इनवाइट कर रहे हैं, भगवद गीता के थ्रू में संदेश दे रहे हैं कि आप आओ मेरे धाम, आओ ये कर्म के सिद्धांत से बाहर निकलो, ये सब इंस्ट्रक्शंस हमको दे रहे हैं। इसलिए हम सबको बहुत ध्यानपूर्वक केयरफुली इन इंस्ट्रक्शंस को रेगुलरली पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में इसको अप्लाई करना चाहिए। ये सब हमारे जीवन को बड़ा सुंदर बना देंगे, सब समस्याओं से निकाल देंगे हमको। हरे कृष्णा। स्टॉप हियर। अभी इस विषय में किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, किसी कोई शंका है तो अभी आप पूछ सकते हैं। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि केमिस्ट्री ऑफ इंस्पिरेशन मीन्स मैकेनिस्टिक अप्रोच से? अच्छा, परमात्मा जो परमात्मा से हम समझ रहे हैं कि इंस्पिरेशन आता है, उससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि हाँ यस डेफिनेटली यस, क्योंकि जीव वो जड़ पदार्थ नहीं है और या इंस्पिरेशन भगवान दे रहे हैं तो जो उसके कार्य शेष रह गए हैं उसके लिए इंस्पिरेशन है कि यू कंटिन्यू देम इन योर नेक्स्ट लाइफ। यस भगवान हमें ऐसी बुद्धि देते हैं जिससे हम कैसे हम उनकी तरफ आ सके, हेल्प करते हैं हमको डिफरेंट वेज। मतलब शमशान वैराग्य क्या भगवान की वजह से होता है?
दुख आता है जब तो भगवान याद करते हैं, लेकिन सुख आता है तो वापस संसार में घुस जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, इस तरह का
जो होता है उसमें भगवान हेल्प करते हैं। वेल इट इज मोर और लेस बेस्ड ऑन द गुणास। ये भोग और त्याग जो दो चीजें हैं ये गुणों के आधार पर होती हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आदमी पहले भोग करता है और फिर भोग से परेशान होकर त्याग करता है, फिर त्याग से परेशान होकर भोग करता है। तो दिस इज विद इन द मोड्स, ये मोड्स के क्रियाओं के अंतर्गत होता है कार्य। लेकिन जब व्यक्ति भोग और त्याग दोनों से ऊपर उठना चाहता है कि भोग और त्याग और ये अलग अलग जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं इसके बियॉन्ड कुछ रियलिटी है, देन ही इज फिट टू अप्रोच गॉड। नहीं तो वो भौतिक जगत के ही सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में ही खेल रहा है। लेकिन जब वो तीनों से ऊपर उठना चाहता है देन कम्स डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ लॉर्ड। बट इट इज वेरी सटल, इसलिए उसमें जितना पार्ट कुछ परसेंटेज कितना मिक्स है, क्योंकि हर चीज एकदम से शुद्ध नहीं होती है, भक्ति भी शुद्ध नहीं होती है, शुरू शुरू में मिक्स होती है। सो जितनी भी है कुछ परसेंटेज दैट मच कृष्णा विल, इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्लैक एंड व्हाइट करना, बड़ा मुश्किल होगा। थोड़ा अंश भी है सो कृष्णा ही सिंह, बिकॉज इज अ पर्सन। जैसे आप दो मित्र होते हैं तो मित्रों का व्यवहार कैसे होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, ऐसा नहीं होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें थोड़ा सा भी भाग है तो उसको देख करके आप उस प्रकार से एडजस्ट करते हैं। तो ऐसे ही हमारा भगवान के साथ ऐसे ही व्यक्तिगत संबंध है। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी।
व्हाई वी डोंट नो समथिंग दैट आवर फॉरफादर
नोस। व्हाई वी डोंट नो समथिंग व्हिच आवर
फॉरफादर, पूर्वजो।
हाँ पूर्वजो, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं मुझसे स्मृति भी आती है, ज्ञान भी आता है और फॉरगेटफुलनेस भी आती है।
ऐसा आप देखिए साइंटिफिक, दे आर ऑल फ्रॉम, दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया,
दे आर नॉट फ्रॉम
इंडिया मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट। व्हाई साइंटिस्ट कम डोंट कम और फ्रॉम इंडिया, दैट्स आवर फॉरफादर्स,
दैट्स आवर,
हमारे पूर्वज नहीं जानते थे ये सब मैथमेटिक्स, सो इंडिया में से भी कम साइंटिफिक बचा हुआ है।
अच्छा, तो आप क्या कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं?
मैं अभी कितने दिनों से वही सोच रहा था।
हाँ मैंने हिंदी में बोली, लेट हिम स्पीक. हाँ बोलिए.
जो हम हमारे पूर्वज जानते थे वो चीज हमारे जीन्स में है, डीएनए में है, लेकिन वो बाहर नहीं आते. दे ऑल थिंग्स आर इन आवर माइंड बट दे आर दे कांट कम. व्हाई? बिकॉज़ आप देखते इन साइंटिफिक मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट आइंस्टाइन टेक ऑल अदर दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया. समथिंग दैट The genes are in its mind, already in its mind. वो चीज उसके दिमाग में थी.
कहाँ से थी? उसके पूर्वजों से.
Something.
कैसे? आइंस्टाइन के पूर्वजों से.
ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन उसके दिमाग में already educated थे सब उसके पूर्वज. Comparison India.
Okay. तो उससे कंक्लूजन क्या निकालना चाह रहे हैं आप?
क्वेश्चन में सोच रहा था.
नहीं, लेकिन मतलब इससे इस विचार से आप कुछ कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं या
पहुंच रहा?
क्या क्या है वो कंक्लूजन? की
पता नहीं कितने दिनों से यही सोच रहा था.
नहीं, इसमें
ढूंढा है ये सब.
नहीं
आप समझ रहे हो, लेकिन आपको बोलने वाला था, लेकिन आपने वही टॉपिक को छेड़ा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ.
अच्छा,
मैं लास्ट में पूछना था, मतलब बीच में आपने वही टॉपिक को लिया था, जींस के बारे में लिया था ना आपने.
अच्छा अच्छा, हाँ हाँ. तो हम ये बता रहे थे कि जींस के बेसिस पर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये सब कैसे डेवलप हो रहा है.
हाँ
Anyway, the basic understanding is, genes जो हैं, अभी मुझे कुछ कार्य करना है तो मैंने उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, कुछ लॉज बनाए हैं कि ऐसे ऐसे काम होना चाहिए. ठीक है, सो जीन्स आर इन द हैंड्स ऑफ गॉड. ट्रेड्स कैसे बनानी है वो आकर खुद तो उसको, यू नो, ही इज नॉट मेकिंग द डिफरेंट बॉडीज बाई हिमसेल्फ. सो जीन्स आर अ मैकेनिज्म थ्रू विच गॉड इज मेकिंग डिफरेंट बॉडीज. द डिजायर्स अकॉर्डिंग टू दिस, ही हैज दिस डिजायर, ही नीड्स दिस जीन्स. एक्चुअली जीन्स इज नथिंग बट सटल बॉडीज, बॉडी का सूक्ष्म रूप है वही जीन्स. वो उसको स्टडी कर, जैसे हम कंप्यूटर को स्टडी करते हैं, उस सूक्ष्म रूप में वो चिप्स में पहुंचते हैं, ऐसे आप बॉडी को स्टडी करोगे तो सूक्ष्म रूप में आप जीन्स में पहुंचोगे. सो जीन्स आर नथिंग बट द मिनिएचर प्रोग्राम फॉर द बॉडी, करेक्ट. सो बट हु प्रोग्राम दैट जीन्स? कह दैट दिस ही नीड्स टू बी इन दिस जीन, ही नीड टू एंटर इन टू. अब आप बोलोगे वो तो माँ और बाप के उससे वजह से होता है, but then who is guiding that where he should take birth, that he should be his father and she should be his mother? Devanetrina, according to shastra, the higher end authorities, they guide. You need to take birth in dogs, so take birth in a dog's family, go and have the genes.
Aapka kehna ye ki koi scientist hai to bhagwan ne usko uske genes mein likh diya ki tum scientist banoge,
उसके खुद मीन्स आदमी किसके थ्रू काम करता है? सब जीन्स के थ्रू ही करता है ना.
तो जीन्स उसमें वो जीन्स था, उसने बनाया.
जीन्स तो आदमी कभी नहीं बनाता,
तो वो प्रोग्राम जीन्स में हम कुछ डेवलप कर सकते हैं ना. कोई चीज जो आप जानते ही नहीं है और आप जानने की कोशिश करते हैं.
वही तो मैं कह रहा हूँ, वो जो बुद्धि है, जानने के लिए एक बुद्धि चाहिए ना. तो बुद्धि एक व्यक्ति के अंदर है, एक व्यक्ति के अंदर नहीं है. ये हमारे कॉन्शियस एफर्ट से तो बुद्धि नहीं आती ना. एक क्लास के अंदर ही एक लड़का है बहुत बुद्धिमान है और एक है नहीं है. उसने कॉन्शियसली तो एफर्ट करके अपनी बुद्धि को डेवलप नहीं किया. एक क्लास में दो लड़के हैं, दोनों ही मेहनत कर रहे हैं, दोनों ही पढ़ाई कर रहे हैं, एक की बुद्धि तीक्ष्ण है कि नहीं है. तो अगर वो उसके कॉन्शियस एफर्ट की वजह से बुद्धि इंप्रूव हुई तो जन्म से ही अलग अलग क्यों है? दोनों के एंडेवर करने पर भी रिजल्ट अलग अलग क्यों है? तो इसका मतलब हमारे कॉन्शियस एफर्ट से हमारी एबिलिटीज फर्क पड़ता है उस पर, लेकिन सोलली वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है हमारे एफर्ट्स पर. सो देयर आर सम हायर लॉज गवर्निंग दिस, इट इज नॉट मेयरली इन अवर हैंड्स. करेक्ट. आप सभी चाहते हैं पैसा कमाना, कोई कोई पैसा कमा पाता, कोई नहीं कमा पाता. सेम सिचुएशन सेम थिंग, एक ही परिवार में दो बच्चों का जन्म हुआ, सेम फादर मदर, वन इज ए जीनियस एंड वन इज ए यू नो मेंटली रिटार्डेड. सो एफर्ट्स की तो बात कहां गई, सेम थिंग सेम, दे आर डिफरेंट. तो इट इज नॉट जस्ट बाय एफर्ट्स, इट इज सम हायर लॉज. एनी अदर क्वेश्चन? क्या सब? हाँ. सम टोटल ऑफ ऑल द कर्मस, जितना भी वो पूरा पूरा जीवन क्यूमुलेटिव एक एक करके जुड़ते हैं सब, ओवरऑल जो भी उसने कर्म किया है, शास्त्र के अनुसार उसके ग्रेडेशंस हैं अलग अलग, रजोगुण तमोगुण सतोगुण. शास्त्रों में ये नहीं है मेडिकल के लिए काम किया, एक आईएएम के लिए काम किया, इट्स इन द टर्म्स ऑफ रजोगुण सतोगुण तमोगुण. तो अगर ओवरऑल जो उसके कार्य हैं वो सतोगुण के अंदर है, सतोगुण कल्टीवेट हुआ है, तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ. अगर सतोगुण ओवरऑल डेवलप किया है उसने, कल्टीवेट किया है, तो वो अपनी स्थिति से बेटर स्थिति की तरफ जाएगा, बेटर मेटेरियल पोजिशन. अगर वही स्तर पे है, रजोगुण में है, तो ही विल रिमेन देयर वेयर एवर ही इज सिमिलर. और तमोगुण को कल्टीवेट किया है, सो ही विल गो डाउन. तो अल्टीमेटली कर्म जो है वो रजोगुण तमोगुण और सतोगुण के द्वारा आके जाते हैं. कोई भी कार्य अल्टीमेटली, हर कार्य इन तीनों गुणों से के मिश्रण से बना है. हर कार्य, हर चीज, हर विचार तीन गुण है. और जो भी आप खाते हो, जो भी आप बोलते हो, एवरीथिंग, फिर उसके हिसाब से तीन गुणों के अनुसार से अकाउंट देखा जाता है. ओवरऑल यू डेवलप सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण लाइक दैट. यस, ओवरऑल. बिकॉज परमात्मा इज नोइंग हिज डिजायर टू डू इट. हाँ, क्योंकि उसके कर्म के अनुसार उसका एक प्रकार की बुद्धि दी है. ही डज नॉट हैव दिस ब्रेन. थॉट कहाँ से आते हैं? ब्रेन, माइंड से आते हैं. ठीक है, माइंड से. माइंड भी शरीर का एक अंग है, वो सूक्ष्म शरीर का अंग है, मन बुद्धि और अहंकार. तो मन के अंदर जो विचार करने की शक्ति है, सो दैट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाई तीन गुणा. जो तमोगुण व्यक्ति है उसके अंदर क्या विचार आएंगे, मैं उदाहरण देता हूं आपको. कल डिक्लेयर हुआ, कल हॉलीडे है आपकी क्लास में, आप क्या पढ़ते हैं? पढ़ते हैं आप? अच्छा, चलिए जो भी करते हैं. आपके ऑफिस में डिक्लेयर हुआ कल छुट्टी है, तो अभी एक आदमी बोलेगा, अरे कल छुट्टी है, पूरा दिन सोऊंगा. दूसरा आदमी बोले, कल छुट्टी है, अच्छा मैं वहां जाऊंगा उधर बड़ौदा, वहां पर एक एग्जीबिशन है जिसमें बताया है कि कैसे कैसे वो कुछ एक मैनेजमेंट सेमिनार है जिसमें बताया कैसे करोड़पति कैसे बनना है. आई विल गो देयर. तीसरा आदमी है, यू नो छुट्टी मिली है, आई विल गो टू सम यू नो रिवर साइड ऑन माउंटेन एंड सिट पीसफुल एंड मेडिटेट एंड ट्राई टू रीड यू नो भगवद गीता शास्त्र लाइक दैट. और तो तीनों के अंदर अलग अलग प्रकार की प्रेरणा इच्छाएं होंगी, तो दैट रिफ्लेक्ट्स कि उनके गुण क्या क्या है. जो तमोगुण व्यक्ति है वो अच्छा जब भी टाइम मिलेगा, जब भी उसके विचार है, सो जाए, आलसीपना, सोना, दिस खूब मेहनत करना, इंद्रिय भोग के लिए, भोग के लिए बहुत प्रयास करना, दिस इज रजोगुण. और शांति एंड यू नो नेचुरल, दिस इज सत्वगुण. तो इसलिए जो हमारे विचार हैं जो मन में आते हैं, मन भी हमारे तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं, इसलिए वो भी उसके द्वारा प्रभावित हैं. लेकिन इस सबके बियॉन्ड हम सब में एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है. जैसे अभी मेरे अंदर विचार तो आ रहे हैं कि मुझे सोना चाहिए, लेकिन अभी मैं बाबा सुनता हूँ कि मनुष्य जीवन सोने के लिए नहीं बना है, ये तमोगुण है. मेरे अंदर इच्छा आती है मैं सिगरेट पीऊँ, लेकिन नहीं ये नहीं पीना चाहिए, ये अच्छा नहीं है. सो दिस इज, आपके गुण तो कह रहे हैं आपको ऐसा करो, लेकिन आपकी जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है उससे नाउ यू आर कंट्रोलिंग देम. नहीं, आई डोंट हैव टू डू इट. लेकिन जानवर के अंदर स्वतंत्र इच्छा शक्ति मैनिफेस्ट नहीं होती है, इसलिए वो तो नियम के अनुसार ही काम करता है. उसको आप सिगरेट पीने को बोलो तो भी नहीं पिएगा, बिकॉज दैट इज नॉट हिज नेचर, यू नो. सो ओनली ह्यूमन बींग विल ट्राई टू गो अगेंस्ट द नेचर, इसलिए उसके लिए कर्म का सिद्धांत भी नहीं लगता है. ओके, शैल वी स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा.